मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी खबरें हैं। इसका मतलब है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इसलिए मुख्य विषय के बारे में अभी कुछ भी कहने की मैं स्थिति में नहीं हूं। पहले हम जो खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं और यदि वक्त बचा तो इनमें से ही किसी विषय को लेकर के फिर हम आगे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और शुरुआत में करना चाहूंगा जीएम सरसों से। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का और खासकर इसके तहत जब बीटी कॉटन की बात हुई थी तब ये एग्जामिनेशन में भी खूब पूछा जाता था। इसके बारे में अभी मुझे दूसरे अखबारों में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसे अपने फ्रंट पेज पर छापा है। तो फ्रंट पेज पर छपी है चूंकि ये खबर तो महत्वपूर्ण है। जब भी कोई हाइब्रिड तैयार किया जाता है, बीज जिसे हम बोलचाल की भाषा में उन्नत बीज कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी ने इन्वेंट किया या किसी ने तैयार कर लिया और बेचना शुरू कर दिया। नहीं, बकायदे उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत बकायदे एक समिति बनी हुई है जिसे हम कहते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, जेनेटिकल इंजीनियरिंग असेसमेंट कमिटी। ये कमेटी है जो बकायदे जब इस तरह के बीज उसके सामने आते हैं तो उनका वो मूल्यांकन करती है, उनके बारे में जांच परख करती है और इसके बाद फिर वो सरकार से इसके लिए सिफारिश करती है। याद रखिए कि सरकार इसकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसी तरह से अभी एक नया बीज तैयार किया गया है जो सरसों का है, उसका नाम है DMH11। इसे अच्छे तरीके से याद कर लें, DMH11 ये हाइब्रिड सरसों का बीज है। इस समिति ने, जो GEAC कहलाती है शॉर्ट फॉर्म में, इसे पर्यावरण के लिए जारी करने की सिफारिश कर दी है। यानी कि पर्यावरण में जारी करने का मतलब है कि इसे बकायदे उपयोग में लाया जा सकता है, इसका उत्पादन किया जा सकता है, किसानों को उपलब्ध कराया जा सकता है और बकायदे इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, इसका असेसमेंट करने के बाद वो सिफारिश करती है। दोस्तों, अब चूंकि इसकी सिफारिश हो गई है और यदि मंजूरी मिल गई तो ये मान करके चलिए कि बहुत ज्यादा फिर इसके उत्पादन की संभावना हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि ये जो नया बीज है इससे सरसों के उत्पादन में लगभग 30% की वृद्धि होगी। सामान्यतः फ्रेंड, हमारे यहाँ जो एक पारंपरिक जो बीज है उसकी जो औसत उपज है वो प्रति हेक्टेयर 1000 से 1200 किलोग्राम है, जबकि जो वैश्विक उत्पादन है सोचिए वो 2000 से लगभग 2200 किलोग्राम है, मतलब हम वैश्विक स्तर से आधे हैं। तो यदि इस बीज को लगाया गया तो लगभग 30% जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसके बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो देखते हैं, उम्मीद की जा रही है कि शायद 2 वर्षों में इसे पूरी तरह से उपयोग में लाने लायक किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, एक खबर आपने पढ़ी होगी और ये थोड़े से विवाद में भी ये खबर आ गई है, लेकिन चूंकि हमारे राजनीति और संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर भी बात की जानी चाहिए। और वो ये है कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने सरकार से कहा है कि हमारे जो नोट होते हैं, हमारी जो करेंसी होती है, उस करेंसी पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के चित्र प्रकाशित किए जाएं, ये उन्होंने मांग की है। आप जानते हैं कि हमारी करेंसी पर महात्मा गांधी का चित्र होता है, अब उन्होंने कहा है कि उसके दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी के चित्र छापे जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है कि अगर हमारे साथ देवी देवता का आशीर्वाद नहीं है तो कई बार प्रयास करने के बाद भी हम सफल नहीं होते, और इसलिए फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से करेंसी नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी के चित्र प्रकाशित करवाने की अपील करता हूं। ये बात उन्होंने कही, घटना के रूप में एक छोटी सी अपील है लेकिन इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, मुझे लगता है कि आप भी इस पर कुछ न कुछ तो विचार कर ही सकते हैं, कुछ न कुछ बातें तो बता ही सकते हैं। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे अब खासकर जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय परंपराएं रही हैं वो अपनी जड़ें मजबूत करने लगी हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। किसी भी देश की अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपराएं होती हैं, यदि वो मानवीय हैं, यदि वो उदारवादी हैं तो उसमें हर्ज क्या है, और जो भारतीय संस्कृति है, इनफैक्ट चाहे आप हिंदू संस्कृति ही क्यों न कर लें, उसके जो मूलभूत तत्व हैं वो उदारता के हैं, व्यापकता के हैं, समन्वय के हैं। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः कहा गया है, यानी कि जो ज्ञान का प्रकाश है वो संसार के चारों ओर से आने दो। भारतीय संस्कृति ने आज से नहीं, कोई हजार साल पहले नहीं, बल्कि जब से इसकी शुरुआत हुई तब से कहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये जो पूरी की पूरी वसुधा है, सोच के देखे, पूरी की पूरी जो वसुधा है ये हमारा कुटुंब है, कुटुंब है, परिवार है। वो ये नहीं कह रहे कि हमारा समुदाय है, हमारा समूह है, कह रहे कि कुटुंब जैसे ही है, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, हमारे इतने निकट होते हैं, उसी तरह से पूरे के पूरे इस पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं वो हमारे कुटुंब हैं। तो ये उदारता है, राइट, ये हमारी संस्कृति में बात रही है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका एक जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि यदि कोई इस्तेमाल इस तरीके से इस संस्कृति का करने लगे, जो हमारे संवैधानिक जो हमारे मर्यादाएं हैं, संवैधानिक जो हमारी आप कह लीजिए कि आवश्यकताएं हैं, जो हमारे देश की एकता में कहीं विघ्न पैदा कर सकते हैं या समाज में विखंडन या विवाद की स्थिति हो सकती है, तो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अगर आप परंपराओं की दृष्टि से देखें तो इस मांग में कोई गलती नहीं है। इंडोनेशिया में आप देखें, मूलतः वो मुस्लिम राष्ट्र है, वहां जो हिंदू हैं मुश्किल तो 2-4% ही होंगे, लेकिन वहां मुद्राओं पर इस तरह के आपको देवी देव हिंदू देवी देवताओं के चित्र दिखाई दे जाएंगे। वहां की स्थितियां अलग हैं, लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, और यदि नोटों पर ये चित्र छापे गए गणेश और लक्ष्मी जी के, तो विवाद की स्थिति होगी ही, और थोड़े मोड़े विवाद की स्थिति नहीं होगी बल्कि काफी विवाद की स्थिति होगी। मेरी समझ से इसके बारे में ज्यादा आशंका किसी को नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद इस तरह की अपील क्यों की जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप राजनीतिक लाभ पाने की इच्छा को काम करता हुआ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, इसी को लेकर के हमारा हिंदुस्तान अखबार है, उसने एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप उस एडिटोरियल कमेंट को ध्यान से पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इंडोनेशिया की चर्चा उसमें है, संविधान की चर्चा उसमें है, और मैं ये निर्देश भी देना चाहूंगा कि ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन्हें तो आप नोट कर ही लें, और यदि आपको कोई दूसरे पॉइंट मिले तो उन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सीधे सीधे एग्जामिनेशन में न पूछा जाए, लेकिन ऐसे राइटिंग में ही आपके काम आ सकता है। आपका जो फोर्थ पेपर है मेंस का, उसमें आपके काम आ सकता है, और हो सकता है कि जो समाज और संस्कृति से संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें भी यह उपयोगी हो सके, क्योंकि यदि आप मेंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पाएंगे कि मुद्दे जो उठाए जाते हैं भले ही वो तात्कालिक न हो, लेकिन उसमें एक बात जोड़ दी जाती है कि समसामयिक एग्जाम्पल के जरिए आप इसे समझाएं, सिद्ध करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी अभी से आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सबसे यहां कहने जा रहा हूं कि इस बीच में जब हमारे यहां 15 दिन की क्लासेस चल रही थी, ऑफलाइन क्लासेस, उस दौरान एक हंगर इंडेक्स जो आता है वो जारी किया गया, और इस बार हंगर इंडेक्स को लेकर के भारत में काफी कुछ लिखा गया। इस रूप में लिखा गया कि नहीं, ये जो हंगर इंडेक्स निकालने का जो तरीका है ये तरीका ठीक नहीं है। भारत ने जबरदस्त रूप से इसका विरोध भी किया है, और विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स परफेक्ट नहीं है, खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इसको लेकर के लगातार आर्टिकल्स आते रहे हैं, मैं लगातार आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करता रहा हूं, एडिटोरियल कमेंट्स भी आते रहे हैं और आज तक आ रहे हैं। दैनिक भास्कर में भी आज एक आर्टिकल आया है, गरीब घट रही है तो भला कुपोषण कब तक रहेगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है मिन्हाज मर्चेंट जी का। इससे पहले भी मैंने जो आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए हैं, और इसको मिला करके मैं कहना चाहूंगा कि आपको इसके ऊपर एक छोटा सा नोट तैयार जरूर कर लेना चाहिए, और उस नोट का आधार ये हो कि नहीं, ये जो हंगर इंडेक्स जो आ रहा है ये परफेक्ट नहीं है, ये हमारी बात को सही तरीके से लेकर नहीं चल रहा है, हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है। हाँ, हमारे यहां कुछ समस्याएं हैं, नो डाउट कि हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उसी के आधार पर भारत को हंगर इंडेक्स में इतना नीचे दिखा देना ये जस्टिफाइड नहीं है। आपकी जो लाइन होगी वो लाइन ये होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मुझे आप सबसे करनी थी। अब वक्त इतना नहीं बचा है कि मैं किसी नए विषय पर आप सबसे बातें कर सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कल बातें करेंगे। तो आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, नेहा कुमावत जयपुर से और साहिल प्रताप, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।